Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये शामि प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागो यः शौजो मयि प्राणापानौ जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृणम् बृहस्पतिरमे दधातु शन्नो भवतु भुवनशयस्पतिः शन्नो भवतु भुवनशयस्पतिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृधस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की प्रेम पुरी जी महाराज की आइए विचार चल रहा है शिव महिमन के दूसरे श्लोक पर पहले उच्चारण कर लें अतीत पंथानम तव च महिमावाङ्मनसयो अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधक्ते श्रुतिरपि शकस्यास्तोतव्य कतिविधगुणकस्य विषयः पदे त्वर्वार्चीने पतति न मन कस्य न वचः पुष्पदंताचार्य जी भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए यहाँ पर बतला रहे हैं। इस प्रकृत श्लोक में निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों ही स्वरूपों का संक्षेपतः चर्चा किया है। वांग मनसयो तव महिमा अतीतः, इसका तात्पर्य है कि भगवान का जो स्वरूप है महिमा है मन वाणी से अतीत है, मतलब कि निर्गुण निराकार स्वरूप का प्रतिपादन। जब मन वाणी से परे है तो उसका व्याख्यान कैसे हो सकता है, क्योंकि व्याख्यान का साधन हमारे पास मन है, और वाणी है। मन वाणी उसी चीज में प्रवृत्त होते हैं जिसमें गुण हो, क्रिया हो या द्रव्य हो, जाति हो, आकृति। सत्यता अवच्छेदक जहां पर होता है वहीं पर शब्द की प्रवृत्ति होती है, और सत्यता अवच्छेदक किसी न किसी गुण, क्रिया, जाति या संबंध से हुआ करती है। पर जो परमात्मा का स्वरूप है वह निर्गुण है, निष्क्रिय है। इस कारण से सत्यता अवच्छेदक की प्रवृत्ति न होने से मन वाणी का विषय नहीं। फिर आखिर इसको कैसे समझे, तो कहते हैं कि भगवती श्रुति डरती डरती कहती है, अतद व्यावृत्या यम चकित्म विधत्ते श्रुतिरपि। अतद व्यावृत्ति का तात्पर्य नेति नेति, यह भी नहीं यह भी नहीं। यहां जो दो नेति शब्द है उसमें से प्रथम नेति शब्द का अर्थ है व्याकृत प्रपंच का निषेध किया है, और द्वितीय नेति शब्द के द्वारा अव्याकृत। यह पूरा प्रपंच व्याकृत अव्याकृत दो भेदों से भिन्न है। तो निषेधावधिक जो अधिष्ठान है वही परब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार से श्रुति भी चकित होकर के उस स्वरूप का प्रतिपादन करती है, परंतु ये बात अनुभव में नहीं उतर रही कि जो मन वाणी का विषय नहीं है उसको निषेध मुख से शास्त्र प्रतिपादन करता है। परमात्मा को समझने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो विधि मुख या निषेध मुख। मुख का प्राधान्य भी होता है, मुख का दरवाजा भी होता है, दोनों अर्थ होता है। तो आप चाहे विधि मुख से समझे या निषेध मुख से, तो निषेध मुख से श्रुति भयभीत होकर वर्णन करती है। जिस प्रकार से आप हरिद्वार की यात्रा पर निकलते हो और आप अपनी पत्नी से कहें जरा अपने संदूक को खाली रखना, हमें भी दो कपड़ा रखना है। पत्नी ने कहा कि संदूक में जगह नहीं, कपड़ा रखना संभव नहीं। पर आप कहते हैं कि जरा कुछ सा अपना सामान करके और दो मेरे कपड़े के लिए जगह बना दो। जब आप आग्रह करते हैं तो पत्नी आपके सामने संदूक खोल करके दो साड़ी को बाहर निकाल दिया और कह दिया कि जगह बन गई। जगह शब्द का अर्थ है आकाश, जो खाली पना स्पेस उसी को आकाश कहते हैं, और आकाश की परिभाषा है जो सर्वव्यापक, जो सबको जगह दे उसका नाम है आकाश। तो आकाश जो सर्वव्यापक है उस सर्वव्यापक आकाश के लिए आप कहते हैं कि जगह बना दो, मतलब आकाश बना दो। और दो साड़ी निकाल दिया तो जगह बन गया, आकाश उपलब्ध हो गया। तो जिस प्रकार से आप संदूक से जब कपड़े निकाल देंगे तो केवल आकाशी आकाश है, आकाश के अंदर ही सारे कपड़े थे, जैसे निकाला वैसे ही जगह बन गया। वैसे ही नाम रूपात्मक यह जो आवरण है इसी को ईशावास में कहा गया है कि ईशावासमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तिन भुंजीथा मा गृध कशचित् धनम्। यहाँ तेन त्यक्तिन का व्याख्याकारों ने अर्थ किया है कि नाम रूप का त्याग करते थे। तो जिस प्रकार से पत्नी ने आपके कपड़े को रखने के लिए दो साड़ी निकाल दिया, जगह बन गई, ऐसे ही उस ब्रह्म में ये नाम रूपात्मक की चादर है, इसको आप निकालेंगे तो चैतन्य चेतन ब्रह्मी ब्रह्म है। ये तो नाम रूप का आवरण होने से हमें सर्वव्यापक परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही है। तो यहां पर वह जो व्यापक परमात्मा है उसमें ही नाम रूप परिकल्पित है और उसी की कल्पना से सारा व्यवहार चल रहा है। एक मेवा अद्वितीय आत्मा है। जिस प्रकार से एक कोई कारीगर सूत लेता है, सूत को लेकर के तरह तरह के कपड़े को रूप दे देता है, अब आप उसको सूत नहीं कहते हैं, कहते हैं कि ये साड़ी है, ये कमीज है, ये ब्लाउज है, ये शर्ट है, पैंट है। उसके नाम बदल गए, रूप बदल गए, आकृतियां बदल गई, पर वास्तव में उन कपड़ों से सूत को अलग कर दिया जाए तो कपड़ा की कुछ भी सत्ता नहीं होती। सारे वस्त्र सूत के ऊपर आरोपित हैं, अनष्ट होने के बाद भी सूत रूप हो जाएंगे। इसी प्रकार से नाम रूपात्मक प्रपंच उस परमात्मा में कल्पित है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचारे तो भी ये बात सिद्ध होती है। जो आप कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, इन सारे व्यवहारों में क्रियाएं अलग अलग हैं। चलना क्रिया अलग है, बोलना क्रिया अलग है। क्रियाओं के भिन्नता होने पर भी मैं की अनुगति सभी जगह है। मैं के द्वारा ही चलना हो रहा है, मैं तत्व को क्रिया करने के लिए चलने के लिए पैर उपाधि है, लेन देन करने के लिए हाथ की उपाधि है। उपाधि मतलब यंत्र समझना अपनी मोटी भाषा में। बोलने के लिए मुख है, सुनने के लिए कान है, सूंघने के लिए नाक है। ये सारी उपाधियां हैं, यंत्र हैं। उसी यंत्रों के द्वारा एक ही मैं तत्व सारा क्रियाकलाप को संपादित कर रहा है। यदि मैं तरह से अलग हो जाए तो सारे यंत्र बेकार हो जाते हैं। जिस प्रकार से व्यवहारिक जगत में एक ही मैं तत्व के ऊपर ये सारे यंत्र और यंत्रों की आकृतियां और इनके व्यवहार तीनों ही आरोपित हैं। सबके आंख भी अलग अलग है, सबके कान का आकार भी अलग है। किसी की आंख मटर की तरह है तो किसी की कमल की तरह। सबकी आंख एक जैसी नहीं, पर आंख के आकृतियों के अलग होने से दृश्य अलग अलग दिखाई नहीं पड़ता है। चाहे जैसे भी आंख हो, सभी आंखों से रूप दिखाई पड़ता है। और रूप देखने वाला एक साक्षी है, जिसको आप मैं कहते हैं। मैं का शोधित अर्थ है चैतन्य साक्षी, और मैं का अशोधित अर्थ है वाच्यार्थ से 3.5 हाथ का शरीर, जिसको हम देहाध्यास भी कहते हैं। तो जिस प्रकार से एक ही मैं के ऊपर ये तमाम उपाधियां कल्पित हैं, उपाधियों के आकार प्रकार, उससे होने वाले व्यवहार और व्यवहार से फल भी अलग अलग है। जैसे मैं के लिए आंख है, आंख का कार्य देखना, देखने का फल है सुख दुख। यदि आपके अनुकूल रूप है तब तो आप सुखी होंगे, आह्लादित होंगे, बड़ा सुंदर सौंदर्य रूप है। यदि आपके प्रतिकूल है तो आप नफरत करेंगे, उससे दुख होगा। तो जिस प्रकार से एक मैं के लिए सारी उपाधियां हैं, सारे आकार प्रकार हैं और क्रियाएं हैं, इसी प्रकार से उस परब्रह्म परमात्मा के ऊपर ही ये पूरा संसार परिकल्पित है। यदि हम उपाधियों को हटा दें तो केवल मैं तत्व बचता है। और जब तक ये उपाधियां हैं, उपाधियों के क्रियाकलाप हैं, तब तक मनुष्य संसार में दुखी सुखी होता रहता है। जैसे या उपाधियों को हटा करके अपने आप में, अपने स्वरूप में आप अंतर्मुख हो जाते हैं तो सारे सुख दुख समाप्त हो जाते हैं। ये आए दिन की अनुभूति है, सबके जीवन की अनुभूति है। जब हम रात्रि को सोते हैं, सोने के बाद उस समय सारी उपाधियां समाप्त हो जाती हैं। न उपाधियां होती हैं, न उपाधियों का व्यवहार होता है। यहां तक कि उपाधियों का जो सामान्य कारण मन है, वह मन भी अपने कारण अविद्या में विलीन हो जाता है। और ये जो सीमित अहंता है मैं, इस सीमित अहंता भी समष्टि अहंकार में विलीन हो जाता है। इसके विलीन होते ही हम परम आनंद को उपलब्ध होते हैं, और इस सबके जीवन की अनुभूति है। आप जगने के बाद कहते हैं सुखम अहम अप्सवाप्सम, नाहम किंचित अवेदिशम, मैं सुख पूर्वक सोया कुछ भी नहीं जाना। यह जो अनुभूति है सुखानुभूति, यह आत्मस्वरूप का है, क्योंकि वहां पर कोई भी विषय नहीं है। संसार में जो वैषयिक सुख है इसमें विषय का संबंध है, और विषय के संबंध से मालिन्यता आता है, फिर सुख दुख होते हैं। परंतु जो सुषुप्ति जन्य जो सुख है उसमें कोई विषय नहीं, निर्विषयक होने के नाते वहां आप परम आनंद को उपलब्ध होते हैं। जगने के बाद पुनः जैसी मैं की स्फुरणा होती है कि अयम अहमस्मि, सुषुप्ति में मैं विगलित हो जाता है, मैं बिल्कुल विलीन हो जाता है। जो जागृत अवस्था में आप कहते हैं कि अयम अहम अस्मि, अयम मतलब कि ये 3.5 हाथ का जो शरीर है, मैं ब्राह्मण हूँ, सेठ हूँ, महात्मा हूँ, इस प्रकार का जो परिच्छिन्न अहंकार है, इसके स्फुरित होते ही सारे यंत्र अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आप सुखी दुखी होते हैं, दिन भर काम करते करते रात्रि को आप थक जाते हैं। आपके अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं कि आप बिना सोए 10-20 दिन काम करते रहें। दुनिया कोई भी ऐसा प्राणी समर्थ नहीं है जो बिना सोए ही सारा काम करता रहे। जैसे आप 4-6 घंटा 8 घंटा काम करते वैसे ही इंद्रियां थक जाती है, मन भी थक जाता है, और आप सुषुप्ति के लिए दौड़ते हैं। उपनिषद में दृष्टांत दिया है, जैसे आकाश में पक्षी कोई उड़ती है, उड़ने के बाद जब थक जाती है तो थकने के लिए अपने घोंसले की तरफ दौड़ती है। ऐसे ये जीवात्मा जब उपाधियों के द्वारा सांसारिक विषय का सेवन करता है, सेवन करने के बाद जब थक जाता है तो थकने के बाद सो जाता है, सोने के बाद अपने आत्मा के साथ अर्थात सीमित अहंता समष्टि अहंकार के साथ अभिन्न हो जाती है। इसी बात को परिषद में कहते हैं, यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति। जो भूमा जो समष्टि अहंता है जिसको ब्रह्मास्मि भी कहते हैं, उसी में सुख है। अल्पे का अर्थ होता जो परिच्छिन्न अहंकार है कि यह मैं हूं, इसमें सुख नहीं है। यदि इसमें सुख होता तो इंसान आए दिन सुषुप्ति की तरफ दौड़ नहीं लगाता। जब आप संसार के सारे विषयों का सेवन करते करते बुरी तरह थक जाते हैं तो मजबूरन सारे विषयों को छोड़ करके सुषुप्ति की तरफ जाना ही पड़ता है। इसलिए यहां पर बतलाया कि वह जो स्वरूप है मन बाणे का विषय नहीं। सुषुप्ति में जाने के बाद वह जो अवस्था है उसका मन बाणे से वर्णन नहीं कर सकते। केवल आप कहते हैं कि मैं सुख पूर्वक सोया कुछ भी नहीं जाना, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अतद व्यावृत्ति के द्वारा ही उस स्वरूप का अधिगत होता है, ज्ञान होता है, जैसे सुषुप्ति में होता है। सकस्य तो तब्य कतिविध गुण कश्य विषय, कहते हैं कि वह जो सगुण साकार है वह सगुण साकार ऐसा है, पदे करवाची ने पतति न मन कश्य न बच। निर्गुण निराकार के विषय में कह दिया कि वह किसी के का स्तोतव्य नहीं है, स्तुति का विषय नहीं, परंतु सगुण साकार ऐसा स्वरूप है जिसमें सबका मन सबकी बुद्धि अनायास ही लग जाता है। जो सगुण साकार में भगवान ने अनेक प्रकाश अवतार लिया है वह सबके बुद्धि का विषय है। सगुण साकार के विषय में शास्त्र कहता है, सर्वम खल्वमिदम ब्रह्म आत्मय इदम सर्वम, बहुत श्रुतियां हैं, स्वाध्याय में वही प्रसंग चल रहा है। तो जो सगुण साकार परमात्मा है वही परमात्मा नाम रूप का चादर ओढ़ा है। जैसे रंग मंच पर कोई रावण बन गया हो, कोई हनुमान बन गया हो, कोई पुरुष यदि गोपी बन गया, गोपी बनने के बाद उस गोपी बने हुए पुरुष के मन में पति पाने की जैसी अभिलाषा नहीं होती। उसे पता है कि मैं तो पुरुष हूँ, लड़का हूँ, रंग मंच पर केवल मैं 2-3 घंटे के लिए गोपी भाव को प्राप्त हुआ हूँ। इसी प्रकार से वही परमात्मा अनेकाकार भाव को प्राप्त हुआ है। इसी को ऋग्वेद में कहा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही उस परमात्मा को अनेक प्रकार से विद्वान लोग कहा करते हैं। वही जो परमात्मा है सत्व गुण को स्वीकार करके विष्णु रूप को प्राप्त हुआ, जगत की रक्षा करता है। वही रजोगुण को स्वीकार करके सृष्टि का विस्तार करता है। वही शिव तत्व तमोगुण को स्वीकार करके संहार करता है। यहां पर शंका होना चाहिए कि सामान्य व्यवस्था है, बीस वृक्षों पे संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। एक विषैला पेड़ को लगाने के बाद भी स्वयं उसका छेदन करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो फिर उस चैतन्य ने जगत को बनाया, संवारा, विस्तार किया, पालन किया, इसके बाद वह संहार क्यों करता है? संहार करना उपयुक्त नहीं है। परंतु हम लोग आए दिन सुनते हैं शास्त्रों के द्वारा कि वही चैतन्य तमोगुण को स्वीकार करके जगत का संहारक बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वास्तव में वह जो संहार है वह नए सृष्टि के लिए है। जैसे किसान खेत में फसल लगाता है, फसल जब पक जाती है तो पकने के बाद वह अपने हाथों ही खेत को काट के घर में लाता है। यदि उस पुराने फसल को न काटे तो नया फसल हो नहीं सकता। इसलिए परमात्मा यहाँ पर संहार में हिंसा भाव नहीं बल्कि उसकी उदारता, अनुकंपा, करुणा है। वही चैतन्य माता के शरीर में प्रवेश करके मातृ रूप से पूजित हो रहा है। वही चैतन्य पत्नी के शरीर में प्रवेश करके वह जो है साक्षात सती रूप से पूजित हो रहा है। वही चैतन्य पति के शरीर में प्रवेश करके पति परमेश्वर हो गया। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में चैतन्य की व्यापकता स्वीकार की है, अनेकता भी स्वीकार किया है। जैसे शरीर में अनेकता होने पर भी एकता है, देश में एकता, अनेकता होने पर भी एकता रहती है। इस शरीर में अनेकता का तात्पर्य है सारी इंद्रियां अलग अलग, इंद्रियों का आकार प्रकार अलग, सारे इंद्रियों के कार्यकलाप अलग, फिर भी इसको हम एक शरीर कहते हैं। आंख से देखना बिल्कुल पैर से चलने के विपरीत है, कान से सुनना मुख के खाने से विपरीत है, फिर भी विपरीत होने पर भी, अनेकात्मता होने पर भी इस पूरे समुदाय को मिलाकर एक शरीर है, ऐसा व्यपदेश कथन होता है। इसी प्रकार से वही चैतन्य अनेक भाव में स्थिर है। यदि पत्नी पति में परमेश्वर का दर्शन करती है तो उसे साक्षात परमेश्वर की दर्शन का फल प्राप्त होता है। सच्चे दिल से दर्शन करे तो, क्योंकि निर्गुण निराकार जो मन बाणी का विषय है उसको वह समझ नहीं सकती है। इसीलिए शास्त्र ने कृपा करके यह कथन कर दिया कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जब सब कुछ ब्रह्म है तो सब कुछ के अंतर्गत वह पति का पिंड आ गया। उस पति के पिंड में परमेश्वर का दर्शन करने से जो परमेश्वर के दर्शन से लाभ होता है वह लाभ उसको उपलब्ध हो जाता है। एक पतिव्रता स्त्री जो परमेश्वर समझकर पति की पूजा करती है वह यदि कुछ भी कह दे वह अमिट होता है। महाभारत में एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बार ऋषि किसी सदगृहस्थ घर पधारे हुए थे। कुछ जो है भेंट पूजा में अव्यवस्था हो गई। अव्यवस्था होने के बाद एक ऋषि को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आने के बाद ऋषि ने हाथ में जल उठाया, श्राप दे डाला कि तूने हमें निमंत्रित करके हमारा सत्कार नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत प्रार्थना किया कि भीड़ भाड़ में हमें आपका ध्यान नहीं रहा, इसलिए मैं आपकी सेवा न कर सकी, क्षमा करे। और ऋषि ने श्राप दे डाला कि जा, तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। पतिव्रता ने कहा कि ऋषिवर, आपने श्राप तो दे दिया परंतु हमारे पति नहीं मरेंगे। ऋषि ने कहा कि हमारा श्राप अमोघ है। उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कि सूर्य उदय होगा तब तो मरेंगे, सूर्य उदय ही नहीं होंगे। उस पतिव्रता स्त्री के पातित व्रत के प्रभाव से सूर्योदय होना बंद, संसार में हाहाकार मच गया, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। सभी ऋषि महर्षि आए, पत्नी को बहुत समझाए, तू मान जाओ। पत्नी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्योदय तो होना नहीं है। ऋषियों ने भी मध्यम मार्ग निकाला कि ऐसा है कि ऋषि की बात भी रह जाए और तुम्हारी बात भी रह जाए, इसलिए सूर्योदय होते तुम्हारे पति तो मरेंगे परंतु कुछ क्षण के बाद जीवित हो जाएंगे।